दिल्ली, मधुविहार। सुबह सुबह का वक्त था। घड़ी सुबह के 8 बजा रही थी। जहां सब घरों में चहल पहल थी, सब अपने अपने कामों में लग चुके थे। औरतें अपनी दिनचर्या शुरू कर चुकी थी, तो आदमी दफ्तर जाने को तैयार हो चुके थे। बच्चे स्कूल जा चुके थे। सूरज देवता सर पर चढ़ाए थे। जुलाई की कड़कती धूप बदन जलाने को तैयार थी। जहां बाकी घरों में सुबह की दौड़भाग शुरू हो चुकी थी, वहीं एक घर में मातम पसरा हुआ था। बाहर दो गाड़ियां खड़ी थी और घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी और हर कोई अंदर क्या हो रहा है ये देखने की कोशिश में लगा था। घर की बाहरी साज सज्जा देखकर लग रहा था जैसे कोई बड़ा फंक्शन हुआ हो। वहीं अंदर का माहौल बड़ा अजीब था। गेट से अंदर जाने पर छोटे से आंगन में जहां सोफा सेट रखा हुआ था और उस पर 3-4 40-50 साल के आदमी सर झुकाए मायूस से बैठे थे, जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। उनके सामने एक लड़का परेशान सा हाथ बांधे यहां से वहां चक्कर काट रहा था। उसकी बाहों और माथे की नसें तनी हुई थी और चेहरा गुस्से से लाल था। जमीन पर बैठी औरतें विलाप कर रही थीं और माथा पीट पीट कर रो रही थीं, जैसे कोई स्वर्गवासी हो गया हो। वहीं पहली मंजिल पर सबसे कोने वाले कमरे में एक लड़की बेड पर बैठी हुई थी। गोरा रंग, मासूमियत से भरा छोटा सा गोल चेहरा, मांग में भरा लाल सिंदूर दूर से ही चमक रहा था। माथे पर कुमकुम की छोटी सी बिंदी लगी थी, कानों में सोने के झुमके, हाथों में भरे भरे चूड़ियां, बाहों पर लगी दुल्हन मेहंदी अभी छूटी नहीं थी, शायद नई नई शादी हुई थी उसकी। लाल साड़ी पहने और 16 श्रृंगार किए वो लड़की नई नवेली दुल्हन तो लग रही थी, पर उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। दुल्हन वाला नूर नहीं था चेहरे पर। आंखें एकदम लाल थीं और सोचकर मोटी मोटी हो गई थी। चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था और पीला पड़ गया था। गले में मंगलसूत्र किसी फांसी के फंदे जैसे लटक रहा था और अपने पैरों को मोड़कर सिमट कर बैठी वो लड़की अपने घुटनों पर अपना चेहरा टिकाए सामने की दीवार को एकटक घूर रही थी। उन आंखों में बेइंतहा दर्द के साथ रोष भी था। लब भींचे हुए थे और चेहरे पर दुख के साथ साथ अजीब सा गुस्सा और तड़प छलक रही थी। उसके सामने एक कागज रखा था जो छत पर लगे पंखे की हवा के कारण फड़फड़ा रहा था। लड़की अभी दीवार को घूर ही रही थी कि तभी एक औरत जिसकी उम्र कोई 50 के करीब थी, वो मुंह पर आंचल रखे रोते हुए वहां आई और प्रीति को अपने सीने से लगाए छाती पीट पीट कर रोने लगी। हाय, क्या होगा अब मेरी बच्ची का? ये क्या अनर्थ कर दिया भगवान ने? किस गुनाह की सजा मिल रही है हमें और हमारी बेटी को? कैसा निर्मोही था जो हमारी बेटी को शादी के अगले ही दिन छोड़कर भाग गया? बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो लड़की अब भी भावहीन सी सामने की दीवार को घूर रही थी, ये लड़की प्रीति थी, जिसकी शादी को अभी मुश्किल से 3 दिन ही हुए थे। शादी नहीं करना चाहती थी वो। कुछ सपने थे उसके और पढ़ लिख कर वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर माँ बाप की इच्छा के आगे उसकी एक नहीं चली। कॉलेज खत्म होने से पहले ही उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए गए। बड़ा भाई था राजेश, शादी हो चुकी थी उसकी, और उसकी बीवी माधुरी को प्रीति फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जबकि राजेश की जान बसती थी अपनी छोटी बहन में। बचपन से साथ खेले कूदे बड़े हुए, हमेशा उसने प्रीति को हर मुश्किल से बचाने की कोशिश की। शादी की बात चलने पर उसने विरोध भी किया, पर उनके पिता धीरज जी ने साफ धमकी दी कि अगर वो उनके खिलाफ गए तो वो घर छोड़कर चले जाएंगे। जब इस घर में उनके फैसले की कोई अहमियत ही नहीं है तो ऐसे घर में वो एक मिनट नहीं रहेंगे। बस फिर क्या होना था, माँ शकुंतला देवी ने राजेश को खूब पट्टी पढ़ाई कि वो जो कर रहे हैं प्रीति के बेहतर भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। माँ बाप हैं उसके, तो कुछ गलत नहीं सोचेंगे अपनी बेटी के लिए। फिर माधुरी, जो चाहती ही थी कि प्रीति नाम की बला उसकी जिंदगी से जल्दी टल जाए, उसने भी खूब दबाव डाला और आखिर में राजेश को भी झुकना पड़ा। प्रीति ने तो शादी के लिए पिटाई भी खाई थी, फिर माँ बाप की इज्जत की दुहाइयां देकर उसको मंडप पर बिठा दिया गया और प्रीति ब्याह कर अपने ससुराल चली गई, जहां उसका बड़े ही भव्य स्वागत किया गया। आखिर चांद सी बहू आई थी घर में, तो समारोह भी भव्य था और लोगों की खुशी भी देखने लायक थी। सभी रस्मों के होने के बाद प्रीति को उसके पति के कमरे में ले जाया गया। पति प्रेम नाम के अनुरूप ही व्यवहार रहा उसका प्रीति के साथ। शादी की पहली ही रात उसने प्रीति पर खूब प्रेम न्योछावर किया। ज्यादा जान पहचान नहीं थी दोनों की, फिर भी वो प्रीति के करीब जाने में जरा भी नहीं हिचका और प्रीति तो जड़ बनी बैठी रही। माँ बाप ने शादी करके लड़की नहीं लड़की की सिर्फ लाश यहाँ भेजी थी, क्योंकि अपनी बेटी को तो उसके सपनों के साथ मंडप के हवन कुंड की आहुति में ही स्वाहा कर चुके थे। प्रीति मर चुकी थी, जिंदा था तो बस उसका शरीर, और बिना जान के जिस्म तो बस माटी का पुतला ही है, जिसके साथ प्रेम ने जो चाहा किया, पर प्रीति ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, सुन सी उसकी बाहों में पड़ी रही। विदाई से पहले माँ ने सिखाया था कि पति को खुश रखना, अब से वही उसका परमेश्वर है और उसी से उसका वजूद कायम है। उनकी सीख याद थी उसे, फिर जब उसके अपने माँ बाप ने उसकी मर्जी की परवाह नहीं की तो एक अनजान से वो क्या ही उम्मीद रखती। अपनी माँ के कहे अनुसार उसने अपने पति परमेश्वर की इच्छाओं की पूर्ति की, उसको संतुष्ट किया और बिना इच्छा के उस पर अपना सर्वस्व लुटा दिया। पता नहीं प्रेम को उससे प्रेम था या बस उसके शरीर की चाहत थी, प्रीति के शरीर की एक उपभोग की वस्तु मात्र थी। शादी की पहली ही रात उसने प्रीति पर अपना जोर आजमाया, बिना प्रीति की मर्जी पूछे उस पर मालिकाना हक जताते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति की। मन जुड़ न सके पर शरीर का मिलन पहली रात ही हो गया और अगले दिन सुबह ही प्रेम का सारा प्रेम हवा हो गया और अपनी नई नवेली दुल्हन को सुहाग की सेज पर अकेला छोड़कर वो सुबह की पहली बेला में ही घर से गायब हो गया। प्रीति को उसके इस त्याग और समर्पण का उपहार मिला एक कागज का टुकड़ा जो उसके नाम प्रेम लिखकर छोड़ गया था और वही टुकड़ा अभी उसके सामने फड़फड़ा रहा था। अगली सुबह प्रीति ने खुद को कमरे में अकेला पाया पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो जैसे जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थी और अब तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसके सपने, उसकी खुशियाँ, उसका वजूद सब इस रिश्ते की भेंट चढ़ चुका था, पर अब भी खोने को कुछ बाकी था और वो थी उसकी इज्जत, उसका सम्मान। प्रीति नई नवेली बहू थी तो उसको तैयार होने को कहा गया और किसी यंत्रचालित गुड़िया की तरह वो भी कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। उसने गौर ही नहीं किया कि उसका पति प्रेम, जो रात को उस पर अपार प्रेम बरसा रहा था, वो शादी की अगली सुबह बिना बताए कहाँ गायब हो गया। उसको फर्क ही नहीं पड़ा इस बात से और उसने अब खुद को इस परिवेश में ढालने का फैसला कर लिया। शादी हो चुकी थी, पति पत्नी का संबंध बन चुका था उनके बीच, तो रिश्ते को स्वीकारने के अलावा अब कोई और रास्ता भी कहाँ था उसके पास। अपनी किस्मत को उसने अपने सर माथे पर रख लिया, पर यहाँ भी उसकी किस्मत ने उसको धोखा दे दिया। नहाकर बाहर आई और जब ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंची तो वहां सिंदूरदान के नीचे रखे फड़फड़ाते कागज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रीति के चेहरे के भाव अब कुछ बदले और वो पेपर उठाकर उसको पढ़ने लगी। प्रीति मैं प्रेम, तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे अपने ऑफिस की ही एक लड़की से प्यार है और उसी से शादी करना चाहता था, पर मम्मी पापा ने हमारे रिश्ते के लिए इनकार कर दिया और उन्हें तुम पसंद आ गई। उनके दबाव में आकर मैंने तुमसे शादी की, पर मैं इस शादी को नहीं निभा सकता।
मैं जा रहा हूँ, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। मम्मी पापा को उनके पसंद की बहू चाहिए थी, सो मिल गई। अब मैं अपने प्यार के साथ अपनी जिंदगी बिताने जा रहा हूँ। मेरी वापसी की राह मत देखना, क्योंकि मैं कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो, क्योंकि मैं अब लौटकर वापस उस घर में कभी नहीं आने वाला। बस इतना ही लिखा था उस कागज पर और यही काफी था प्रीति की दुनिया बर्बाद करने के लिए। अपना सब कुछ लुटाकर भी वो कुछ नहीं बचा सकी। मेहमानों से भरे घर में जब ये बात खुली तो सारे घर में हाहाकार मच गया। प्रेम को ढूंढा जाने लगा, औरतों का रोना धोना शुरू हो गया। प्रेम की माँ गरिमा जी एक भली औरत थीं, बड़े अरमानों से अपने इकलौते बेटे की बहू घर लाई थीं, पर बेटे की इस हरकत ने उनका सर शर्म से झुका दिया। पर उन्होंने अपने उस धोखेबाज और फरेबी बेटे के जाने का दुख नहीं मनाया, बल्कि प्रीति को सांत्वना देने लगी। अवधेश जी, प्रेम के पिता, पुलिस में कम्प्लेन लिखाए और वो गुस्से से भड़के हुए थे अपने बेटे की इस हरकत के कारण। मानसी, प्रेम की छोटी बहन जो 12वीं में थी, अपने भाई के लिए खूब चीख पुकार कर रही थी, पर प्रीति के लिए उसको बुरा भी लग रहा था। जाने इन सज्जनों के घर वो धूर्त आदमी कैसे पैदा हो गया था। खैर, अब बेटे ने हर जगह थू थू करवा ही दी थी उनकी, तो झेल रहे थे। औरतें जहाँ प्रीति के लिए दुख मना रही थीं तो वहीं उसको भला बुरा सुना भी रही थीं। प्रीति तो पत्थर बनी बैठी थी, जैसे उसे खुद का होश ही ना हो। यहाँ लोग उसको सांत्वना कम दे रहे थे और उलाहना ज्यादा दे रहे थे कि कैसी औरत है, अपने मर्द को खुद से बांधकर नहीं रख सकी। शादी के अगले दिन ही पति दूसरी औरत के पास चला गया तो जरूर इसी में कोई कमी होगी, जरूर उसकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा होगा, पति को संतुष्ट नहीं कर सकी होगी। लड़की में ही खोट है, अभागिनी है, घर में आते ही घर का बेटा घर छोड़कर चला गया। बहू तो घर जोड़ती है, उसने तो बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसी जाने कितनी ही अनर्गल बातें वो खामोशी से सुनती रही। वो खुद नहीं समझ सकी कि आखिर उसकी गलती क्या थी, किस कसूर की सजा मिल रही थी उसे। उसने तो उसका विरोध भी नहीं किया था, सारी रात वो अपनी मनमानी करता रहा, फिर भी उस पर ही क्यों उंगलियां उठ रही हैं। किसी गुनाहगार की तरह सर झुकाए वो लोगों की बातें सुनती रही। 2 दिन बीत गए, प्रेम नहीं मिला। दूर के रिश्तेदार दुख जताकर और प्रीति को उलाहने देकर अपने अपने घर रवाना हो गए। प्रीति पत्थर की बन गई थी, न कुछ खाती और ना ही बोलती। बस जिस बिस्तर पर उसका स्वाभिमान रौंदा गया था उस पर सिमट कर बैठी रहती और उस पेपर को घूरती रहती। 3 दिन तो बात किसी तरह प्रीति के घर वालों से छुपा ली, पर 4थे दिन राजेश अपनी बहन को लेने पहुंच गया और सब सारी बात उसके सामने आ गई। खूब हंगामा हुआ वहां। राजेश का गुस्सा सहन से बाहर जा चुका था। उसने अवधेश जी और गरिमा जी को बहुत सुनाया कि जब बेटा नहीं तैयार था तो जबरदस्ती शादी करवाकर उसकी बहन की जिंदगी क्यों बर्बाद की। अपना गुनाह कबूलते हुए दोनों ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। राजेश ने उसके बाद 1 मिनट के लिए भी प्रीति को वहां नहीं रहने दिया। उसकी हंसती खेलती बहन की ये हालत उसके बर्दाश्त से बाहर थी और अंदर ही अंदर गुस्से से चल रहा था वो। कुछ देर पहले ही प्रीति अपने घर आई थी और अपने कमरे में बैठी फिर दीवार को घूर रही थी। उसकी खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा था जो उसको अंदर ही अंदर तबाह कर रहा था, पर इससे सभी अनजान थे। उसके घर में मातम का माहौल था। हर कोई उसकी चिंता कर रहा था या सिर्फ दिखा रहा था, पर प्रीति भावहीन थी, जैसे उसे इन सबसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। उसकी भाभी माधुरी ने भी दिखावे के खूब आंसू बहाए, पर मन ही मन प्रीति को खूब कोसा कि 3 दिन में वापस चली आई और अब तो जाने की कोई उम्मीद भी नहीं। घर में कुछ रिश्तेदार भी आए थे जो शाम होते होते रवाना हो गए। राकेश की तो हिम्मत नहीं हुई कि प्रीति से मिल ले या कुछ बात कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी इस बर्बादी का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहा था। प्रीति की जिंदगी हर तरफ से बर्बाद हो चुकी थी, सबसे विरक्त हो चुकी थी वो, जिंदगी से विमुख हो गई थी, जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थी। कुछ वक्त पहले तक जिस लड़की की हंसी और शैतानी से यह आंगन खिलखिलाता था, जो आजाद पंछी की तरह यहां से वहां उड़ती रहती थी, अब एकदम से बिल्कुल खामोश हो गई थी। अजीब रंग दिखाए थे उसे जिंदगी ने। मायके वालों को भगाने की जल्दी थी तो बिना मर्जी के शादी करवा दी। पति शादी के अगले दिन छोड़कर चला गया। ससुराल से 3 दिन में दाना पानी उठ गया और अब वापस उसी जगह आ गई थी जहां से उसकी बर्बादी का ये किस्सा शुरू हुआ था। अब देखना ये था कि क्या लिखा है उसकी किस्मत में, आगे उसके साथ क्या होने वाला था, उसकी जिंदगी में अब खुशियां आने वाली थीं या अभी दुखों का सिलसिला जारी रहने वाला था। कैसे संभाले प्रीति खुद को, क्या हालात के आगे हार जाएगी वो और मुंह मोड़ लेगी जिंदगी से, या सब भुलाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेगी। ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी बदलते रिश्ते।